arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम
बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। पूनम की चांदनी छिटकी हुई थी। अपने घर की छत पर खड़ी एक नवयुवती धवल साड़ी पहने, हाथों में सुहाग की चूड़ियां नहीं, माथा सौभाग्य बिंदी रहित सूनी मांग और सूनी आंखें, जिसकी किसी समय किसी को भी मोहने की अपूर्व क्षमता थी, आज निस्तेज खड़ी थी। ये सब होते हुए भी वो एक अपूर्व सुंदरी थी, जो एक बार उसे देख लेता आंखें झपकाना भूल जाता। ये थी ठाकुर परिवार की छोटी बहू सुनीता, जो असमय विधवा हो गई थी। भगवान ने शायद मुक्त हस्त से उसे सौंदर्य प्रदान किया था, पर भाग्य देने में वे कृपण हो गए थे। अप्रतिम सौंदर्य को खोटे सिक्के सा कोने में फेंक दिया गया था। उसे अभागिन कहा जाता था, पर उसका सौंदर्य आज उसका शत्रु था। हर कोई भूखी नजरों से उसकी ओर देखता था, पर उसके चेहरे का तेज देख कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। वो सोचती थी कि कब तक अपने को इनसे बचा पाएगी। भगवान ही उसका सहारा थे, पर यदि भगवान का सहारा होता तो उसे वैधव्य का दुख ही क्यों मिलता। पति की मृत्यु को अभी अधिक दिन नहीं बीते थे कि घर वालों ने सभी नौकर हटाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। सभी स्त्रियां डरती थीं कि उनके पति कभी भी इस अतुलनीय रूप पर झपट्टा मार सकते हैं। ठाकुरों में ये आम बात मानी जाती है। सभी स्त्रियां एकजुट होकर इस समस्या का हल ढूंढने लगीं, पर उन्हें कुछ समझ में आया नहीं। वे उसे गंदे से गंदा और फटा पुराना कपड़ा देती थीं, पर उसका रूप था कि फटे पुराने कपड़ों में भी झांक झांक कर बाहर आता था। सुनीता समझ गई थी कि देवर तथा जेठ कभी भी उसे अपना शिकार बना सकते हैं। अतः एक रात वो मौका देखकर भगवान का नाम लेकर घर से निकल भागी। अंधेरी रात थी, पानी जोरों से बरस रहा था और वो भागी चली जा रही थी। उस नरक कुंड में गिरने की अपेक्षा वो मौत की गोद में सोना ज्यादा पसंद करती थी। दिन निकलने से पहले वो घर से दूर निकल जाना चाहती थी। वो जानती थी कि जेठ तथा देवर उसे ढूंढने में लगे होंगे, पर घर की स्त्रियों ने चैन की सांस ली होगी। जेठ देवर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि सोने की मुर्गी को दोनों ही खो चुके थे। दिन निकल आया था। सुनीता थककर चूर हो गई थी। उसके कपड़े और भी चीथड़े हो गए थे। भागने में उसने कांटों की भी परवाह नहीं की थी। पैरों में कांटे धंस गए थे, जिनसे खून बह रहा था। चिंता मग्न वो पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे कुछ दूरी पर एक गांव दिख रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। किसी तरह गिरती पड़ती वो उस गांव तक पहुंची। देखने में वो भिखारिन सी लग रही थी। उसकी दयनीय दशा देख कर उसे कुछ खाने तथा पीने को गुड़ का शरबत दिया गया। लोगों द्वारा पता पूछे जाने पर वो उन्हें अपलग देख रही थी। एक ने कहा, शायद मार पीट कर इसकी सास ने इसे घर से निकाला है। उसने सहमति में सर हिला दिया। गांव की स्त्रियों ने उस पर तरस खाकर उसे कपड़े दिए और रहने को झोपड़ा। कई दिनों बाद जब वो कुछ ठीक हुई तो उसने सोचा कि इन सब पर वो भार बनकर नहीं रहेगी। उसने उन स्त्रियों से कहा, मुझे कुछ काम चाहिए। जब आप सब खेतों पर काम के लिए जाती हैं तो मैं आपके बच्चों की देखभाल करूंगी। सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं, क्योंकि बच्चे भूखे रोते रहते थे। वहां जानवरों का डर भी रहता था। आए दिन बच्चे बीमार भी हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं था। अब स्त्रियां निश्चिंत होकर काम पर जाती थीं और बच्चे सुनीता के पास रहते थे। बच्चे भी स्वस्थ दिखने लगे थे और सुनीता का मन भी लग जाता था। एक दिन जब वो नहा रही थी, तब गाँव के एक बदनाम युवक शेखर की दृष्टि उस पर पड़ी। उस अतुलनीय रूप को देखकर वो ठगा सा रह गया और उसे भोगने को उतावला हो गया। उसने सोचा, पहले वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकालने में पीछे नहीं रहेगा। दूसरे दिन वो वहां पहुंच गया, जहां सुनीता बच्चों की देखरेख कर रही थी। वहां पहुंचकर बोला, भौजी, इतनी धूप में बैठी हैं, आपके लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम मैंने कर रखा है। आपको वहां खाना कपड़ा तथा अच्छी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ आपको क्या मिलेगा? दो रोटी। आपको यहाँ देखकर मुझे तरस आ गया, इसलिए आपसे पूछे बिना ही मैंने आपके लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया। सुनीता को गुस्सा तो आया, पर अपनी स्थिति को देखते हुए वो बोली, भैया अभी तो मेरा मन इन बच्चों में लग गया है, जब मन नहीं लगेगा तब आपसे कह दूंगी। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अब आप जाइए। शेखर ने सोचा, सुनीता से बात करने का रास्ता तो मिल ही गया है, किसी न किसी बहाने अब आता रहूँगा। सुनीता भी समझ गई कि शेखर उसे जल्दी छोड़ेगा नहीं और किसी न किसी बहाने आता रहेगा। बार बार उसके आने पर वो बदनाम भी हो सकती है। चिंता के कारण रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो रात्रि जागरण के चिन्ह उसके चेहरे पर थे और शरीर टूट रहा था। उसने अपनी सहेली रानी से कहा कि आज वो बच्चों को देखने नहीं जाएगी। रानी उसका चेहरा देखकर समझ गई कि सुनीता किसी बात से परेशान है। रानी ने कहा, मुझे अपनी परेशानी बता दे, मैं तेरी सहायता करूंगी। विश्वास कर, तेरी बात किसी को पता नहीं चलेगी। सुनीता की आंखें भर आई। उसने शेखर की बातें उसे बताकर कहा, रानी वो बदमाश है और अगर मैं उसकी बातें नहीं मानूंगी तो वो मुझे बदनाम करेगा, इसी चिंता से मैं परेशान हूँ। क्या तू इसे हल कर सकती है? रानी ने उत्तर दिया, हल तो वास्तव में मुश्किल है, पर हर समस्या का दूसरा पहलू भी होता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हम दो दिमाग मिलकर इसका हल ढूंढ ही लेंगे। उसी समय दूर से शेखर आता दिखा। रानी बोली, शैतान का नाम लेते ही शैतान सामने है, अब तुम इसे बैठने मत देना। ये कहकर कि सरपंच जी आने वाले हैं, बच्चों की सुविधा के बारे में विचार करना है। तुम्हें यहाँ देखकर सवाल कर सकते हैं, वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई काम तो है नहीं। शेखर जैसे ही पास आकर बैठने को हुआ, सुनीता ने ऐसा ही कहा और शेखर ने भी समय की नज़ाकत को समझते हुए जाना ही उचित समझा। सुनीता ने चैन की सांस ली। शाम का समय था, फागुन का महीना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर के लिए चिंता से मुक्त सुनीता कुछ गुनगुनाती हुई रानी से मिलने जा रही थी। यकाया किसी की बाहों में अपने को पाकर वो चीहूंक उठी। उसने देखा वो एक सजीले नवयुवक की बाहों में है। छटक कर वो बाहों से निकल गई और कठोर स्वर में बोली, क्या बदतमीजी है, देख कर नहीं चलते? युवक हंसकर बोला, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे देवी जी, आप शायद नींद में चली जा रही थी, ये तो कहिए मैंने आपको बचा लिया, वरना गंदे गड्ढे में गिरकर हड्डी तुड़वा लेती। युवक उस गांव का नहीं देखता था, क्योंकि सुनीता वहां के सभी लोगों को पहचानती थी। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक को निहारा। युवक ने कहा, मुझे यहाँ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, 5 साल पहले शहर पढ़ने चला गया था। मैं यहाँ के सरपंच जी का बेटा हूँ, कल शाम ही लौटा हूँ, मेरा नाम दिवाकर है। शहर में रहते रहते जी उब गया था और यहाँ की हवा मुझे खींच लाई, पर आप भी यहाँ नई नई लगती हैं। सुनीता ने शर्म से गर्दन नीची करके कहा, माफ कीजिए, गलती मेरी थी, मौसम इतना रंगीन था कि मुझे सुध ही नहीं रही। वैसे मेरा नाम सुनीता है, मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ आई हूँ और खेतों में काम करने वाली स्त्रियों के बच्चों की मैं देखरेख करती हूँ, जो बच्चे कुछ बड़े हैं उन्हें मैं पढ़ाती हूँ। इस कार्य में मुझे आनंद आता है और समय भी व्यतीत हो जाता है। दिवाकर बोला, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, और किसी को पिटवाना हो तो भी बता सकती हैं, क्योंकि मैं जूडो कराते में पारंगत हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ने का शौक अधिक नहीं है, पेट भरने लायक कमा लेता हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा एक छोटी चुलबुली सी बहन है। आपके घर में कौन कौन है? सुनीता की आँखें भर आईं। बोली, मैं अभागिन हूँ, मेरा कोई नहीं है, जो थे वे नहीं रहे, मैं अकेली हूँ। यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि कुटुंब का सुख क्या होता है। यहाँ मुझे माँ बाप भाई बहन सबका प्यार मिल गया है। एक दोस्त की कमी थी, वो आपने पूरी कर दी, सचमुच मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बातों में सुनीता को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। वो घबरा कर बोली, मुझे बच्चों को देखना है, फिर मिलूंगी। पीछे से मुस्कुराती रानी बोली, लो अपने बच्चों को संभालो, और वो दिवाकर के साथ चली गई। बहुत दिनों बाद सुनीता के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। दिवाकर जैसा दोस्त पाकर अब उसे शेखर जैसे बदमाश से छुटकारा मिलने की आशा हो चली थी। दूसरे दिन रोज की तरह शेखर आधम का। आज सुनीता की आंखों में डर की जगह उपेक्षा का भाव था। शेखर को आश्चर्य हुआ कि इन आंखों में आज अवज्ञा का भाव कैसे आ गया, पता लगाना होगा। उसने बड़े प्यार से सुनीता से कहा, सुनीता मेरे रहते गांव में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, अभिमानपूर्वक शेखर बोला, तुम केवल इशारा कर दो, मैं समझ लूंगा उससे। सुनीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर अवज्ञा का भाव देखकर शेखर समझ गया कि कोई मजबूत सहारा सुनीता को मिल गया है। उसने पता लगाना शुरू किया तो उसे दिवाकर का पता चला। उसने सोचा, जल्द से जल्द इस कांटे को निकालकर फेंकना होगा, तभी उसकी दाल गल पाएगी। उसने सुनीता को बर्बाद करने की सोची। अंधेरी रात थी। वो चुपके चुपके सुनीता के कमरे की तरफ बढ़ा। यकायक वो चीख पड़ा। लोग भागे भागे आने लगे। सांप को भागता देख सब समझ गए कि उसे सांप ने काट लिया है। रात को सुनीता के कमरे के पास उसे देख सभी समझ गए कि उसकी नीयत साफ नहीं थी। काफी उपचार के बाद भी वो बच नहीं पाया और सुबह होते होते उसकी मौत हो गई। सभी ने चैन की सांस ली, खासकर स्त्रियों ने। उसके शव को नदी में बहा दिया गया, क्योंकि गांव वालों का विश्वास था कि सांप के काटे व्यक्ति को पानी में बहा देना चाहिए। अब स्त्रियां रात को भी घर से बाहर निकलने में डरती नहीं थी। गांव का माहौल ही बदल गया था। 8 दिन शांति से बीत गए। एक रात एक सफेद चोंगे में एक भयंकर छाया जोर जोर से हंसती हुई कह रही थी, मैं भूखा हूं, मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो मैं इस गांव को जला दूंगा। गांव वाले डर गए। वे समझ गए कि गांव में किसी प्रेतात्मा ने प्रवेश किया है। अब वो प्रेतात्मा रोज ही सबको डराने लगी। स्त्रियों का घर से निकलना बंद हो गया। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता। कभी वो प्रेत शेर बन जाता तो कभी कुत्ता। सुनीता के कमरे के पास आकर वो भयंकर अट्टहास करता तो कभी कुत्ता बनकर गुर्राता। सुनीता की रातों की नींद हराम हो गई। 10 दिन इसी प्रकार बीत गए। प्रेत रोज नए खाने की फरमाइश करता। गरीब गांव वाले परेशान हो गए थे। एक दिन सुनीता ने दिवाकर से कहा, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, ये प्रेत मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? गांव में एक से एक सुंदर लड़कियां हैं, अगर शेखर जिंदा होता तो हम सोचते कि ये उसी का काम है, पर वो तो मर चुका है। किसी और आदमी की शरारत हो नहीं सकती, क्योंकि गांव में हम लोगों का कोई दुश्मन है नहीं। इसलिए लगता है कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि साधारण मनुष्य है जिसको भूख लगती है। चलो पता करते हैं, आप एक नकली पिस्तौल ले आओ, प्रेत होगा तो डरेगा नहीं, और यदि साधारण मनुष्य होगा तो डर कर भाग जाएगा। गांव के कई लोगों को उसने ये योजना बताई। पहले तो वे राजी नहीं हुए, फिर दिवाकर ने कहा, आप लोग छुप के बैठिए, जैसे ही वो सुनीता के घर के आसपास चक्कर काटेगा आप घबराइएगा नहीं, मैं नकली पिस्तौल से फायर करूंगा। यदि सचमुच प्रेत हुआ तो मेरी तरफ बढ़ता रहेगा, और यदि वो भागने लगा तो आप सब उसे पकड़ लेना। रात अंधेरी थी। प्रेत के आने का समय हो चुका था। सब सतर्क होकर बैठ गए। प्रेत आया। उसकी शक्ल शेर सी लग रही थी। पहले तो छिपे हुए गांव वाले डर कर पीछे हट गए। प्रेत को देखते ही दिवाकर ने हवाई फायर किया। पिस्तौल की आवाज सुनकर प्रेत डर से भागने लगा। जल्दी ही मुखौटा गिर गया। अब वो साफ मनुष्य दिखने लगा। गांव वालों की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने उस आदमी को दबोच लिया। रोशनी चलाई गई। प्रेत की शक्ल देखकर सब चकित रह गए। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो और कोई नहीं, शेखर ही था, जिसे मरा हुआ समझकर गांव वालों ने पानी में बहा दिया था। शेखर घिघियाता हुआ बोला, मुझे मारना मत। उसके ये कहने से पहले उस पर काफी जूते पड़ चुके थे। गांव वालों ने पूछा, तू तो मर गया था शेखर? शेखर हाथ जोड़कर बोला, मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ। कहते हैं सांप के काटने पर, पानी में फेंकने पर उसका जहर चला जाता है। मुझे मरा हुआ समझकर आपने पानी में फेंका होगा। पानी में बहते बहते मैं किनारे से लग गया। तब तक मेरा जहर निकल चुका था और मैं साधारण मनुष्य की तरह स्वस्थ था। सुनीता को मैं अपना बनाना चाहता था, पर बीच में दिवाकर आ जाता था। मैं दिवाकर और सुनीता को सजा देना चाहता था। इतने लोगों को डरा धमका कर मैं प्रेत बन गया और मेरा नाटक सफल हुआ। कुछ दिनों तक नाटक करते करते मैंने सोचा कि मैं सुनीता को उठाकर ले जाऊंगा। इस बीच दिवाकर ने सब गुड़ गोबर कर दिया। गांव वाले अंधविश्वासी थे, इसलिए मुझे पकड़ नहीं सकते थे। पर दिवाकर शहर का रहने वाला था और शिक्षित था। यदि वो ना होता तो मैं पकड़ा नहीं जाता और सुनीता को लेकर निकल जाता। अब मैंने सच्ची घटना बता दी है, मुझे छोड़ दो। गांव वालों ने यह सुनकर उसकी और पिटाई शुरू कर दी। मार मार कर उसकी टांगें तोड़ दी गईं, ताकि वो कभी भी कोई काम ना कर पाए। इस तरह प्रेत के डर से सहमे लोगों ने निश्चिंती और संतोष की सांस ली। गांव वालों ने कहा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा।
arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन।